नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाल्मीकि गिरी संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी चरितर रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक अक्षरम् महापातक नाशनम् कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरोह कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मारुतुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं सुरसे नमामि रामं राम अनुजं सीतां भरतं भरत अनुजं सुग्रीवं वायुसोनं च प्रणमामि पुनः पुनः रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पत्यहे नमः। जय सिया राम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान राधारास बिहारी मंदिर जुहू की ओर से रामनामी के उपलक्ष्य में और राधारास बिहारी मंदिर के पाठ उत्सव के उत्सव में ये पांच दिन का वाल्मीकि राम कथा का आयोजन इस्कान मंदिर जुहू ने किया है। आप सब पधारे हैं, आज रविवार को आपका स्वागत है। दो दिन राम कथा में हमने बाल कांड का वर्णन श्रवण किया। बाल कांड में भगवान श्री रामचंद्र का दिव्य प्रकट्य यज्ञ से उत्पन्न पायसम के अंदर भगवान विष्णु का प्रवेश होना और चतुर्व्यूह रूप वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होना, फिर उनकी शिक्षा शिक्षण वशिष्ठ जी के पास और फिर परीक्षण उनकी परीक्षा विश्वामित्र के साथ, जनकल्याण की असुर संहार की और फिर उनके जीवन में माधुर्य विवाह का प्रसंग जनकपुर में। कल जनकपुर में चार राजकुमारों का मंगलमय विवाह कार्यक्रम संपन्न करके बारात वापस अयोध्या में पहुंची और अयोध्या में सब मंगल होने हो रहे हैं। भरत जी के मामा युधाजित जो केकई देश से आए थे उनके साथ भरत जी शत्रुघ्न ननिहाल चले गए। यहां बाल कांड वाल्मीकि रामायण में समाप्त होता है, यहां से अयोध्या कांड आज शुरू करेंगे। अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र का वचन पालन करना, पिता की आज्ञा का पालन करना, ये मुख्य केंद्र बिंदु है। भागवत भरत का उत्तम चरित्र अयोध्या कांड की चरम सीमा है। कितना महान भरत है भागवत पुरुष, उसका बड़ा अद्भुत दर्शन है और अयोध्या कांड में ही भगवान श्री रामचंद्र का वन गमन है। अयोध्या कांड शुरू होता है रामचंद्र के दिव्य गुणों से। जैसे भरत जी और शत्रुघ्न चले गए केकई देश, तो अब महाराज दशरथ की सेवा में और अयोध्या राज की सेवा में राम और लक्ष्मण लग गए और महाराज दशरथ ने विशेष रूप से राम को प्रजा के देखभाल के कार्यों में लगा दिया। और वहां लिखा है कि रामचंद्र के गुणों में एक गुण तो ऐसा अद्भुत है, किसी ने एक बार भी उनका हित किया उसको कभी भूलते नहीं है, गुण गिराई है, किसी ने एक बार अच्छा काम जीवन में उनके लिए किया कभी उसको भूलते नहीं, और किसी ने कितनी भी गलती की उसको कभी याद ही नहीं करते हैं। ये रामचंद्र की सबसे बड़ी विशेषता है। गुण किसी का भूलते नहीं है, अवगुण किसी का याद करते नहीं। ये एक बहुत अद्भुत गुण हमारे जीवन में हमको ठीक तरह समझ लेना चाहिए। इस चिट्ठी में क्या लिखा है मैं पढ़ नहीं सकता हूं, लेकिन साइलेंस संबंध एक शब्द साइलेंस दिखता है उससे लगता है कि या तो मैं साइलेंस करूं और नहीं तो ये सब समझते हैं, कोई इसमें से ना समझ नहीं है। एक कथा में एक घंटे के बाद एक बच्चा एक दो बार बोला तो महाराज को गुस्सा आ गया, बोला बच्चे को संभाल नहीं सकते हो, दोबारा बोला। माताजी उठ के बोली एक घंटे से आप बोलने, हमने आपको कहा चुप करने को। बच्चा एक बार रोया, इतना सारा परेशान हो रहे हो। असल में क्या, जब जहां भी भगवान की कथा होती है राम की, वहां हनुमान जी आते हैं। और कलयुग ने भी एक संकल्प ले लिया है कि जहां भी कथा होगी मैं भी जाके विघ्न डालूंगा, नहीं तो मेरे को कहां मिलेंगे ग्राहक, सारे कथा में चलेंगे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। तो कलयुग ने सीधा काम करने के लिए पहले तो जर्मनी में जाके नोकिया गांव में अपना काम शुरू किया, वहां से छोटे छोटे डब्बिया बना के सबकी जेब में डाल दी कि ये हरे कृष्णा कहें तब तक अंदर से आवाज आए हरे राम से पहले हरी वो हेलो करें, हरे राम नहीं हेलो, तो बीच में बात ही बिगड़ जाती है। तो ये कलयुग का आविष्कार है। अब आप कलयुग को सुनना चाहते हैं कि राम कथा को सुनना चाहते हैं, ये आप निर्णय कर लीजिए। हरे कृष्णा। ये मोबाइल तो ब्रह्मचारी का भी बच्चा है, जेब में लेके घूमता रहता है। मुझे लगता है कि इसमें लिखा है कि साइलेंस करो का मतलब साइलेंस मोड पे मोबाइल को रख दो। हरे कृष्णा। तो ये एक राम जी का गुण हमारे जीवन में उतर जाए। प्रभुपाद जी ने एक बार शिक्षा देते हुए कहा कि मधुमक्खी की तरह जीवन में रहो, कड़वे से कड़वे में नीम के अंदर से भी मिठास निकाल के ला सकते हो, और इस गंदगी वाली मक्खी की तरह कचरे के ऊपर मत बैठो, फोड़े फुंसी के ऊपर मत बैठो, दूसरों में दोष मत देखो, सब में गुण देखोगे तो सब में गुण होते हैं। तो रामचंद्र का ये एक अद्भुत गुण है, किसी का अच्छा किया हुआ भूलते नहीं है, किसी का बुरा किया हुआ याद नहीं करते हैं। और दूसरा व्यक्ति उनसे मिलने आए तो पहले ही बोल के उसका संकोच दूर कर देते हैं, क्योंकि राजकुमार के पास जाके कोई बोले तो बेचारे को आवाज निकलेगा नहीं, तो आते ही कहते हैं आइए आइए भैया, आप कुशल मंगल तो है ना, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, तो सामने वाले को बोलने में उत्साह हो जाता है। तो ये रामचंद्र की एक शैली है, किसी को उनसे मिलने में कहीं झिझक होती ही नहीं है, कोई भी जाके उनसे बात करे तो बड़े प्रेम से उनसे मिल लेते हैं। और हमेशा वो आयु में बड़ों का संग करते हैं, क्योंकि उनके जीवन के जो अनुभव है उससे लाभ लेते हैं। जो ज्ञान में वृद्ध हैं, ऋषि हैं, उनका संग करते हैं ताकि उनसे आध्यात्मिक जिज्ञासा अपनी है उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, नीतिज्ञ व्यक्ति हैं, उनका संग करते हैं। अर्थ नीति में तो इतने निपुण है कि कितना कमाना आया है, कितना खर्च करना है, एक शुक्र नीति भागवत में है अर्थ की, अपने कमाई के पांच भाग करने चाहिए, इसको शुक्र नीति कहते हैं। एक भाग भगवान की सेवा के लिए, दूसरा भाग पब्लिसिटी के लिए, विज्ञापन के लिए, तीसरा भाग इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकि ज्यादा कमाया जाए, चौथा भाग रिश्तेदारों के साथ मेलजोल ठीक रखने के लिए, पांचवा भाग अपने आजीविका के लिए। जिसने अपनी कमाई के ये पांच भाग किए वो अर्थशास्त्र के अनुसार हमेशा सुखी रहेगा। पहले भगवान का भाग और दूसरा विज्ञापन का, ताकि पब्लिसिटी होगी ना तो और धन आएगा, इन्वेस्टमेंट और पुत्र मित्र बंधु बांधु रिश्तेदारों के साथ, और एक अपने आजीविका के लिए, सभी अपने ऊपर लगाने की जरूरत नहीं। तो ये भगवान राम बड़े अर्थशास्त्र में नीतिज्ञ थे, सारी प्रजा उनसे प्रेम करती थी। और एक दिन महाराज दशरथ ने एक सभा बुलाई, अपने मंत्री बुलाए और जो भी छोटे छोटे जनपद थे वहां से गणमान्य सब जनता को बुलाया और कहा, देखो आपकी सेवा करते करते कई हजारों सालों से इस हमारे पूर्वजों की अयोध्या राजधानी में मैं आपकी रक्षा करते आ रहा हूं, अब मेरी उम्र ढलने जा रही है और मैंने श्री रामचंद्र के अंदर सब सद्गुण देखे हैं और मेरी इच्छा है कि मैं उनको युवराज के पद के ऊपर अभिषेक कर दूं, आपका क्या मत है, आप राय दीजिए। सबने एक स्वर में कहा, महाराज धन्य है, आपने हमारा इच्छा को पूरी की, वो दिन हम अपने आंखों से कब देखेंगे जब रामचंद्र का राज अभिषेक होगा। अब दशरथ अंदर तो बड़े खुश हो गए कि सभी सम्मति दे रहे हैं, लेकिन राजनीति के निपुणता के अनुसार कहने लगे, इतने जल्दी मेरे हां में हां मत मिलाओ, कुछ विचार करके बताओ, किस क्यों आपको मेरे राजा होने में क्या आपत्ति है। दशरथ जी ऐसे पूछने लगे, ये बड़ी बुद्धिमानी से पूछने लगे कि ऐसे आप मेरी हां में हां क्यों मिला रहे हो। तो सभासदों में उठ के कहा कि राम हमारे घरों के अंदर पूजा करते हुए बच्चे भी कहते हैं कि हमारे जीवन में हमको राम जी राजा के रूप में मिलेंगे, वो दिन कब आएगा। और इतना नीति में निपुण महाराज आपके कुल का तिलक है ये रघुकुल का, और इसके राज के अभिषेक में आपने जो ये निर्णय लिया है हम सब सहमत हैं। अब तो सबने जब ऐसे कह दिया तो गुरु वशिष्ठ को प्रार्थना करके कहते हैं, महाराज दशरथ के अब आप राम जी के युवराज पद पे अभिषेक करने के लिए मुहूर्त निकालो। महाराज ने तो ऐसे पोथी खोला, बोला कल ही पुष्य नक्षत्र है, देर काय के लिए करने, कल ही राज अभिषेक की व्यवस्था की जाए। सुमंत्र मंत्री जो दशरथ अपने मित्र के समान मंत्री को समझते, आप सारी व्यवस्था कीजिए, सब तीर्थों का जल मंगाइए, ये काम यहां शुरू हो गया। वाल्मीकि रामायण में तो नहीं लिखा है लेकिन रामचरितमानस में है कि एक दिन दशरथ जी ने अपने कान के पास दो चार सफेद बाल देखे तो उनके मन में आया कि अब कान के पास सफेद बाल पहले क्यों आते हैं, कान में सुनाते हैं कि तेरे जाने का टाइम हो गया, यहां आवास है। तो महाराज दशरथ बहुत बुद्धिमान थे कि ये वारंट आ गया है, अब हमको ये राजपाट छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। क्या महाराज दशरथ के पास 2 रुपये नहीं थे काला रंग मंगाने के लिए, ऐसे कर देते काम हो जाता। ये सब प्रकृति के नियम बने हुए हैं, समय के साथ वृक्त होना चाहिए। पूरी वैदिक संस्कृति के अंदर हर एक राजा महाराजा राज भोगने के बाद बच्चों को राज तिलक देके वनवास में जाके ऋषियों के पास अपने जन्म को सार्थक करते थे, ये पूरी वैदिक संस्कृति की शैली है। महाराज दशरथ ने ये निर्णय ले लिया, तैयारी चारों, ये तो खबर तो ऐसे फैल गई चारों ओर सुगंध की तरह, सब लोग तैयारी, अपने आप अपने घर के बाहर वो केले के पत्ते लगा रहे हैं, नारियल रख रहे हैं बहुत सुंदर सजा के, अक्ष पत्र पीले ये और पत्तियां, नगर नगर से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कल अभिषेक देखा जाएगा चारों ओर से। और रामचंद्र को दशरथ जी ने बुलाया अपने पास, कहा बेटा अब सद्गुण संपन्न तो हो, लेकिन पिता के नाते मुझे आपको राजनीति के विषय में कहा है कि कहना यह है कि बेटा जितने अभी आप निम्र हो, जितनी आप में अभी निम्रता है, हम्बलनेस है, राजा बनने के बाद इसको और बढ़ा देना, प्रजा को अपने पुत्र के समान समझना, प्रजा को दुख होए तो आपके हृदय में उसकी पीड़ा होनी चाहिए और उसके दुख के निवारण से पहले आप भोजन भी नहीं करें तो अच्छा है। भाव ये है कि प्रजा, अगर प्रजा आपके सामने आने में डरती है, इसका मतलब आप के चरित्र में कोई कमी है। अगर आपके सामने आने में कोई डरता है, इसका मतलब आपको अपने मन की बात नहीं कह सकता है, इसका मतलब आपका उनके साथ संबंध अच्छा नहीं है। तो बेटा ये सब गुण आप अपने में पहले हैं, लेकिन पिता के नाते मैं आपको ये शिक्षित दे रहा हूं कि प्रजा पुत्र होता है, प्रजा पुत्र के समान होती है। इसलिए पुराने जमाने में राजा महाराज जब बाहर निकलते थे, लोग फूलों की वर्षा करते थे, क्योंकि वो पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे। जब से राजा राज अभिषेक तो होता नहीं है, गुरुजनों की शिक्षा राजाओं के पास रही नहीं, तब से राजाओं ने प्रजाओं के हृदय के ऊपर राज करना नहीं, दिमाग के ऊपर डंडे से राज करना शुरू कर दिया। तब से आजकल का कोई राजा अकेला बाजार में जाएगा तो लोग गोलियां बरसाएंगे, फूल बरसाने वाला जमाना चला गया, अब तो गोलियां बरसेंगी। किसी राजा में ये हिम्मत है कि बाजार के अंदर जाके घूम के आ जाए? नहीं आ जा सकता है। और रामचंद्र के चरित्र में आप आगे देखेंगे कि वो तो सामान्य कपड़े पहन के और नगर पूरे के अंदर भ्रमण करके आ जाते थे, और चारों जो देखते थे कि एक जगह आप देखेंगे कि सीता जी रथ में आ रही है और लोग उसको देख रहे हैं, तो बोला आप नीचे उतर के आए ताकि सब लोग आपको निकट से देख पाए। ये मर्यादाएं जो राज की हैं। और दशरथ जी वहां उनको विदा करते हैं और राम जी मां कौशल्या के पास जाके प्रणाम करते हैं। माता सिर को सूंघ के कहती आशीर्वाद दे के बैठ, पिताजी ने आज शिक्षा दे के हमको कहा है कि कल युवराज पद के ऊपर अभिषेक होगा। मां कौशल्या की खुशी के आंसू आते हैं कि रोज इस भगवान विष्णु की मैं आराधना करती हूं, श्री रंगनाथ, जो बड़े से बड़ा दुनिया का मंदिर है श्री रंगनाथ, ये श्री रंगनाथ का विग्रह कौशल्या के महल में पूजित हुआ करता था। ये तो राम जी ने विभीषण को दिया था और विभीषण ले जाते हुए जहां अभी मंदिर है यहां रख दिया, और इसका मुख अभी भी लंका की तरफ है और वहां से ये हिला नहीं। आज भी ये मान्यता है कि विभीषण प्रतिदिन इस मंदिर में सुबह मंगला दर्शन करने आते हैं, अभी भी जगह विभीषण आते हैं। और रामायण में तो एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार विभीषण जल्दी में थोड़े देर से आए, और विभीषण का कद कितना होगा, वो त्रेता युग का होगा, नहीं तो भी 18-20 फुट से लंबा होगा। वो जो अंदर जा रहे थे, किसी ब्राह्मण के ऊपर उनके पांव का अंगूठे का नाखून लग गया और पूरे का पूरा ब्राह्मण दब गया नीचे, दब गया। तो सब लोगों ने इकट्ठे होके उसको मारना चाहा, लेकिन 50 लोग तो चारों ओर उसके खड़े हुए, फिर भी वो 50 उनसे 15 फुट लंबा खड़ा था, पहुंच नहीं पाए। तो वहां फिर क्या किया, उनको एक गुफा में बंद कर दिया। ये समाचार रामचंद्र के पास पहुंचा, रामचंद्र का राज अभिषेक हो चुका था। रामचंद्र ने भरत को कहा, भरत आप इस राज को देखिए, पुष्पक विमान मैं रसर रंग क्षेत्र में ले चलो। उतरे, सबने श्री राम का सम्मान किया और कहा कि एक असुर को हमने बांध के रखा है इस गुफा के अंदर, उसने एक ब्राह्मण के ऊपर उसका पांव पड़ गया, बड़ी चोट आई है। तब रामचंद्र ने, उनका ये अद्भुत गुण है, कहा दास का दोष मालिक उसकी सजा भोगता है। ये विभीषण मेरा भृत्य दास है, आपको दंड देना है तो मेरे को दीजिए। अब तो सारी प्रजा रामचंद्र के चरण पकड़ के कहती है, महाराज आप तो हमारे प्राण नाथ हो, आपको कैसे दंड देंगे। फिर बोला मेरे सेवक को निकाल दो। विभीषण वहां को वहां से निकलवा के रामचंद्र ने वापस लंका भेजा। तो रामचंद्र का ये गुण है, और शरणागत ऐसे हैं कि एक बार कोई कह दे कि मैं रामचंद्र आपका हूं, उसका दोष तो देखते ही नहीं और उसकी रक्षा का तो वचन कर लेते हैं, उसके अवगुण कभी नहीं देखते। शरणागत में अवगुण कभी नहीं देखते। ये तो प्रसंग हमको मिलेगा जब विभीषण शरण लेने के लिए आएगा सेतु बंधने से पहले। आकाश में खड़ा है विभीषण, चार मंत्रियों के साथ आया है, कहता है श्री राम मैं आपके शरण में हूं, और नीचे से सुग्रीव कहता है रावण का भाई है ये, तो इसको बिल्कुल निहात नहीं, इसको तो शरण में लेना ही नहीं है। अंगद कहता है बांध के रख दो, पहले परीक्षा लेनी पड़ेगी। हनुमान जी कहता है नहीं, अच्छा आदमी है, इसने मेरी रक्षा की थी, रावण ने जब कहा कि मार दो तब इसने कहा दूत को नहीं मारा जाता है, इसकी बेटी त्रिजटा तो सीता की सहायता करती थी, इसको मारना नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा आदमी है, इसको संग में ले लेना चाहिए। तब राम जी ने बड़ी सभा मंगा के सबकी राय ली, सुग्रीव ने अपनी राय दी, अंगद ने अपनी राय दी, हनुमान ने अपनी राय दी। फिर रामचंद्र बोले सुग्रीव तुम ये कहते हैं रावण के भाई है इसलिए इसको शरण में नहीं लेना चाहिए, ये ठीक नहीं है। शरण में लेने वाले के अंदर कोई अवगुण देखा नहीं जाता है। अंगद इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, शरणागत की परीक्षा नहीं लेते, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो तो अपने आप को ही अर्पण कर रहा है तो परीक्षा क्या लेंगे। हनुमान जी आप आधा सच कह रहे हैं कि इसको शरण में लेना चाहिए, और आधा ठीक नहीं कि अच्छा है इसलिए शरण में लेना चाहिए। अच्छा हो या बुरा हो, शरण में आने के बाद तो शरणागत ही है। तब रामचंद्र के मुख से ये श्लोक निकला है, जैसे श्री कृष्ण का भगवत गीता में श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य, एग्जैक्टली ऐसा ही श्लोक है, एक बार जो मैं कह दे राम मैं तेरा हूं उसको मैं रक्षा सब प्रकार से करता हूं, ये मेरा वचन है, ये रामचंद्र का वचन है, मैं उसकी रक्षा करता हूं हर प्रकार से। और विभीषण को भगवान ने शरण में नहीं लिया, कहा कि समुद्र का पानी लाओ, लंकेश आप हमारे मित्र हैं। उस वक्त तो सबने कहा अभी तो लंका पहुंचे नहीं, इसको आपने लंका का राजा बना दिया, कल अगर रावण आ गया और उसने आपका शरण ले लिया तो आप रामचंद्र जी क्या करेंगे। रामचंद्र कहते हैं भाई सुग्रीव चिंता मत करो, अभी अयोध्या का मेरा राज है और भरत मेरी बात मान लेगा, रावण शरण लेगा तो अयोध्या का राज उसको दे दूंगा। युद्ध भूमि में नाग फांस में बधे हुए रावण को, रामचंद्र को अपने हुए दुख नहीं हो रहा था, भरत को मूर्छित देखा शक्ति से, तब कहते मैंने वचन किया है विभीषण को लंकेश बनाना, ये मेरा वचन तो नहीं टूट जाएगा। वो वचन की चिंता ज्यादा होती थी अपने, क्योंकि अरण्य कांड में रामचंद्र का जो मुख्य केंद्र बिंदु सारे का है ऋषियों को दिए हुए वचन का पालन करना, और सारे दंडक अरण्य को राक्षसों से शून्य कर देना। एक जगह है नागपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पे, उसका नाम है रामटेक। रामटेक का मतलब वहां राम जी ने ये वचन दिया था ऋषियों को, अब इस अरण्य में इस दंडक अरण्य में कोई भी राक्षस नहीं रहेगा और मैं सबका संहार कर दूंगा। तो राम अपने वचन के ऊपर कितना सत्य कहते हैं राम जी, सीता समय आने के ऊपर मैं शील छोड़ सकता हूं, सीता आपको छोड़ सकता हूं, लक्ष्मण आपको छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने वचन को नहीं छोड़ सकता। ये रामचंद्र के वचन की मर्यादा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, और ये अरण्य कांड का तिलक है कि वचन क्यों। और भागवत के अंदर आप देखेंगे तो बलि महाराज के वचन पालन की महिमा है, गुरु ने मना किया तब भी वचन से नहीं हिले, भगवान छल करने के लिए आए तब भी अपने वचन से नहीं हिले। तब आज एक शब्द हमारी भाषा में चल पड़ा है, अरे भाई बलिदान दे दिया। बलिदान शब्द कहां से आया, बलि महाराज से आया, जिसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया। तो वचन पालन की कितनी बड़ी महिमा है, ये पूरा आगे हम इसका दर्शन करेंगे। राम जी के राज अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। एक बार फिर राम जी को बुला के दशरथ जी ने और गुरु जी ने कहा, अब तो पूजा पाठ करना, कुश के ऊपर रात को शयन करना और कल सुबह सवेले पुष्य नक्षत्र में आपका राज अभिषेक होगा। सब तैयारियां अपनी जगह हो रही है। चांदनी रात में सबसे ज्यादा सबको सुख होता है, लेकिन एक दुखी होता है। वो कौन दुखी होता है? चोर। चोर को बड़ी चिंता होती है, ये चांदनी रात है, लोग देख लेंगे, चोरी कैसे करेंगे। तो ये चारों ओर चांदनी की तरह चमक रही है अयोध्या, लेकिन देवता अपने बाल खींच रहे हैं कि ये राज का राज, रामचंद्र का राज अभिषेक हो गया तो ये यहां राज करेंगे तो रावण को मारेगा कौन। देवता चिंता होकर सरस्वती को कहे, हे मां सरस्वती जाओ कुछ करो, ये हमारा सारा काम बना बनाया बिगड़ जाएगा। कितनी प्रार्थना करते भगवान को, कहा था कि आप अवतार लो, और फिर अभी राज अभिषेक हो गया और यहीं रुक गए तो रावण को तो मारने वाले काम में देर हो जाएगी। सरस्वती ने कहा, ये काम तो इतने खुशी के मौके पे मैं जाके कोई मुश्किल खड़ी कर दूं, लेकिन क्या करूं, कर्तव्य पालन करना है। वो घूम के देखती है तो पूरे अयोध्या के अंदर एक भी ऐसा नहीं है जिसके हृदय में राम का प्रेम पूर्ण भरा हुआ नहीं हो, तो अब किसको जाके देखे। घूमते हुए एक ही व्यक्ति उसको दिखाई दिया जिसके हृदय में राम के लिए प्रेम नहीं था, और वो थी कुबड़ी मंथरा। और सरस्वती ने जाके कुबड़ी मंथरा के ऊपर अपना जादू चलाया। पद्म पुराण में लिखा है कि देवताओं ने एक अप्सरा को मथुरा के रूप में कई कई देश में भेज दिया था कि समय आने के ऊपर केकई के साथ जाना और रामचंद्र को वनवास भेजना ताकि रावण को मारने में देर न हो। ये वर्णन भी अपनी जगह पे है। तो आज मंथरा छत के ऊपर चढ़ी है केकई के महल के, चारों ओर देखती है कि ये हो क्या रहा है, इतना सारा अयोध्या सज गया, भात क्या, हमको अभी तक पता नहीं लगा। तो सामने कौशल्या के महल से राम को दूध पिलाने वाली धा मां को देख के पूछती है, ये हो क्या रहा है बहन। बोला, मालूम नहीं आपको, रामचंद्र का कल राज अभिषेक होगा। अरे सरस्वती ने तो पहले ही उनका बटन बदल दिया था, उसके अंदर तो सांपनी की तरह क्रोध आ गया। नीचे दौड़ती कुबड़ से गई, देखा तो केकई आराम से पलंग के ऊपर लेट रही है। बोला, आराम से लेट रही है, तेरा आहित हो रहा है तुम्हें पता नहीं है। केकई बोले, कुबड़ी तेरे को किसी ने मारा है क्या, तू कभी ऐसे बोलती है, लक्ष्मण तुम्हारे को कभी डांटता है, आज किसी ने तुम्हें मारा क्या। नहीं, मुझे नहीं मारा है, तेरा हित हो रहा है। बोला, मेरा क्या ये अहित हो रहा है। बोला, राम जी का राज तिलक हो रहा है। तो केकई के उठ के एक हार निकाला, बोला, इतना शुभ समाचार दिया है मंथुरा, आज तक तुमने मेरा हृदय खुश कर दिया, मेरा पुत्र राम भरत से भी मुझे प्रिय है, वो तो कौशल्या से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है, उसको राज अभिषेक मिलेगा तो हमारा तो आनंद हो गया। मंथरा कहती है, ये तो तीर काम नहीं किया, आप नहीं जानती हो महारानी केकई, ये आपका अहित होगा, कौशल्या राजमाता बनेगी, आप दासी बनोगी। मेरी बहन कौशल्या मुझसे प्रेम करती है, राम मेरे को माता के समान समझता है, राम के विषय में कुछ कहा तो तेरे जवान निकाल लूंगी। अब कहती है, तीसरा तीर निकालती है और मंथरा कहती है, रामचंद्र के बेटे राजा बनेंगे रामचंद्र के बाद, भरत तो राज वाली लाइन से भी निकल जाएगा, संभव है कि कभी भरत को देश निकाला दिया जाए और कभी मरवाया भी जा सकता है। अब केकई का दिमाग एकदम उल्टा हो गया, ऐसे कभी मैं नहीं होने दूंगी, राम का राज तिलक नहीं हो सकता। केकई ने एकदम यहां सीखना क्या है, कुसंग आदमी को एक मिनट में पलट देता है। कितने अच्छे विचार थे केकई के। अन्य रामायणों में ऐसे लिखा है, एक जगह
एक दिन श्री रामचंद्र,
पहले तो ये लिखा है कि श्री रामचंद्र कौशल्या के महल से ज्यादा केकई के महल में रहते थे। केकई उनसे कौशल्या के समान ही प्रेम करती थी और रामचंद्र कहते हैं कौशल्या मेरी जननी है, ये मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकती है जो मुझे चाहिए, जिस काम के लिए मैंने अवतार लिया है, लेकिन ये मेरी छोटी मां ये मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए ये बदनामी सह लेगी। तो एक दिन ऐसे लिखा है, रामचंद्र पीछे से आके केकई की आंखें बंद कर दी। तो केकई ने हाथ को पकड़ के कहा, प्रिय राम। बोला हां मां। बोला आंखें खोलो, पहचान लिया। बोला नहीं, एक वचन दो। बोला क्या वचन? मेरे प्राण ले लो बेटा, तुमको क्या चाहिए? नहीं, बोला पहले वचन दो फिर। बोला शब्द खा के कहती हूं कि आप जो कहोगे वो करूंगा। राम जी तब कहते हैं, मां कौशल्या ये काम नहीं करेगी, और मैं जब तक वन में नहीं जाऊंगा और ऋषियों का संग नहीं करूंगा, तब तक रावण वध के जिस कार्य के लिए मैंने अवतार लिया है वो पूरा नहीं होगा। आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और मुझे 14 वर्ष वनवास देना पड़ेगा। ये राम जी ने केकई से वचन लिया था, ये कुछ रामायणों में इसका ऐसा वर्णन है। वो इस आधार पे भी माना जाता है कि केकई के कार्य को भरत ने तो निंदा किया ही है, लक्ष्मण ने तो बहुत बुरा कहा है, महाराज दशरथ ने बुरा कहा है केकई को, वशिष्ठ गुरु ने बुरा कहा है, लेकिन राम जी के मुख से कभी केकई के लिए अपशब्द तो निकला ही नहीं है। उनके सामने कोई केकई की बुराई करते थे तो कहता है मेरी मां के लिए दोष वो अर्पण करेगा जिसने कभी साधुओं का संग नहीं किया है। और कहते हैं कि राम जी वनवास से आके पहले केकई के महल में गए और उनसे मिले। ये मां ने राम की इच्छा पूरी करने के लिए, इसको कभी देखना ऐसे चाहिए। भीष्म पितामह भागवत है, 12 भागवतों में से एक महाजन है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है, वो काय के लिए कृष्ण के सामने लड़ेगा और कृष्ण के ऊपर बाण क्यों चलाएगा? कृष्ण की इच्छा है, क्योंकि अगर भीष्म वहां खड़ा नहीं होगा तो दुर्योधन हिम्मत नहीं करेगा लड़ने की। इसलिए भीष्म की प्रार्थना इतनी भागवत में अद्भुत है, जो श्री कृष्ण उसको अंत समय जाके सामने खड़े हुए जब प्राण त्याग रहे, ऐसा तो दुनिया में कोई उदाहरण है ही नहीं। एक तो हरिदास का ऐसा उदाहरण है कि चैतन्य महाप्रभु सामने खड़े हैं और चरण पकड़ के प्राण छोड़ रहा है, और एक ये भीष्म पितामह, इसके अलावा अंत समय किसी के सामने साक्षात भगवान खड़ा हो ऐसा तो उदाहरण है ही नहीं कहीं। तो भीष्म पितामह भगवान का भागवत भक्त नहीं है, है ना, लेकिन सामने खड़ा होकर अपोजिट साइड में लड़े ना, तो भगवान के भक्त कभी। वैसे रावण भी कहां से आया, ये वैकुंठ से उतर के नीचे आया भगवान विष्णु के मन की इच्छा पूरी करने के लिए। तो ये सब बातें हैं, ठीक तरह से समझनी चाहिए। हमको केकई को बुरा नहीं कहना चाहिए कभी भी। हमको इससे सीखना क्या चाहिए, दो बातें। अपने से छोटे का शरण नहीं लेना चाहिए। केकई के शरण, केकई ने मंथरा का शरण लिया इसलिए अहित हो गया सब। तो कभी भी घर की बुराई कहां से होती है, नौकरों से, नौकरानियों से घर की बुराई होती है। और दूसरी विशेष बात, अभी हम बात तो बाद में आएगी तब करेंगे, लेकिन सीखना क्या चाहिए, पति पत्नी के बीच में रहस्य की बात हो वो नौकरानियों को बोलने की क्या जरूरत है? अब जो ये कह दिया केकई को कि भरत को भी मारा जा सकता है, देश निकाली दी जा सकती है, तो कहती है कि राम का राज तिलक नहीं होगा, लेकिन कल होने वाला है, रोकेंगे कैसे? तब मंथरा कहती है, आपने तो कई बार मुझे कहा है कि महाराज ने आपको 2 वर दिए थे। अब 2 वर कहां दिए थे दशरथ ने? स्वर्ग में। केकई को ये वरदान था, वो युद्ध में निपुण थी, महाराज की सारथी थी, महाराज देवताओं के लिए लड़ रहे थे, महाराज के रथ के पहिए के अंदर से जो एक्सल में जो कीला लगा है वो निकल गया। कीला जो निकल गया केकई ने अपनी उंगली उस किले के अंदर जगह पे डाल दी। युद्ध चलता रहा, नहीं तो गिर जाता, रथ गिर जाता, पहिया गिरता, महाराज हार जाते, प्राण निकल जाते। ये केकई को वरदान था, उसकी उंगली तो लोहे से ज्यादा सख्त थी। और जब महाराज की विजय हो गई और केकई ने उंगली निकाली, महाराज ने देखा ये तो आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इतना बड़ा कष्ट आपने सहा है मेरे लिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप मांग लो, आपको वर क्या चाहिए। बोला आप ही मेरे वर हैं, और कौन सा वर मुझे चाहिए। केकई का बहुत सुंदर उत्तर था, आप ही तो मेरे वर हैं, और क्या वर मैं मांगू आपसे। नहीं नहीं, मैं आपको वर दे, अपने पास रख लीजिएगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी आपके होते हुए आपसे वर लेने की। ये कहा केकई का भाव तो ऐसा था, लेकिन आज ये मथुरा को क्यों बताया कि हमको वो दो वर दिए हैं। ये अगर नौकरानी को नहीं बताया होता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते ना। तो केकई को कभी बुरा मत कहना, लेकिन उनसे ये सीखना कि अपने से छोटों का शरण नहीं लेना चाहिए, और नौकरानों को पति पत्नी के बीच की बातें नहीं बतानी चाहिए, और नौकरानी जब रखी जाए तो कम से कम पता होना चाहिए आई कहां से है। ये जब पता देखा कि ये केकई कहां, ये मंथरा कहां से आई है, तब कहीं उसकी एड्रेस पता मिला नहीं। हमारे पास एक संकीर्तन में भक्त आया था, 2 साल अच्छी तरह से सेवा किया। एक दिन सुबह मैं देखूं तो संकीर्तन लीडर मेरे पास आके घंटे सुबह सवेरे जगाया। मैंने बोला क्या हुआ। बोला प्रभु जी वो भक्त दिख नहीं आया कहां है। मतलब भक्त गया है, कोई उछ हो गया। बोला भक्त नहीं, वो 40-50 हजार कैश है, वो भी उसके साथ गया। तो मैंने बोला उसका पता को, बोला उसका पता नहीं कहां से आया था, नाम सबको पता है उसका, वो आया कहां से था, उसका गांव कौन सा है, कुछ पता नहीं है। तो ऐसे बहुत से समस्याएं होती हैं कि अपरिचित को, इसलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो पहले आपको अच्छी तरह से परिचय है उसकी छोटी मोटी गलती के ऊपर उसको निकालना नहीं, क्योंकि वो उसको आप जानते हो ना कम से कम। और दूसरा नया कोई लाओ 2-4 दिन में सब कुछ ले जाए तो क्या करोगे। तो ये सावधानी से सीखने कि ये घर किस तरीके से चलाना चाहिए। बाकी केकई को बुरा कहने से राम जी खुश नहीं होंगे। राम जी का राज तिलक हो गया, राजा बड़े हो गए, तो क्या रामचंद्र का चरित्र इतना चमकता, ये रामायण इस तरीके से कथा होती क्या इसकी। इतने सारे ऋषियों का संग होता, जनवासियों का संग होता, गिरिवासियों को दर्शन मिलता राम जी का, हाँ गरीब कोल भीलों को दर्शन मिलता क्या, नहीं मिलता। तो सोने को जब तपाया जाता है तब वो कुंदन बनता है। और श्री रामचंद्र जी ये सिखा रहे हैं हमको जीवन के अंदर कि जीवन की जो 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 रास्ता है वो हमेशा ऊपर नीचे चलता है। जीवन में चढ़ाई उतराई हमेशा रहती है, सीधी लाइन तो कभी जीवन में होती ही नहीं है। डॉक्टरों को मालूम है दिल की सीधी लाइन तो केवल मरे हुए आदमी की होती है। सीधी लाइन अगर आ गई इसका मतलब आदमी मरा हुआ है। कभी मत समझना कि जीवन सीधी लाइन है, हमेशा उतार चढ़ाव आएगा। और हर हाल में प्रसन्न रहना, ये अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। अब तो मंथरा ने कहना दो वर मांग लो, पहले वर में राज अभिषेक व्रत का होना चाहिए, और दूसरा राम जी 14 वर्ष यहां से चले जाएंगे तो लोग राम जी का नाम ही भूल जाएंगे, व्रत को सब मान लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 14 ही वर्ष वन क्यों दिया गया, 13 में काम क्यों नहीं चलता है, यह भी कभी प्रश्न उठाया जाता है। और आगे थोड़ी देर में हम सुनेंगे रात को रोज लक्ष्मण जी भरत के लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते थे, और राम जी कहते थे अभी सुमंत्रा नंदन जाओ विश्राम करो, ये रोज का नियम था। वनवास में जाने के बाद श्रृंगेरपुर में राम जी लेटे हैं, भरत जी चरण दबा रहे हैं, आंख बंद कर दिया और बोला नहीं कि सुमंत्रा नंदन जाके सो जाओ। तो कहते हैं क्या राम जी थक गए थे चल के आए हैं इसलिए नींद आ गई है। बोला नींद कैसे आ सकती है, भगवान साक्षात, वैसे भी विश्वामित्र से बला और अबला विद्या के बाद थकावट तो हो नहीं सकती है, तो आंखें बंद क्यों की है। बोला आंसू पी रहे हैं। बोला आंसू क्यों पी रहे हैं कि आज लक्ष्मण को ये नहीं कह सकते कि जाओ भैया सो जाओ। बोला क्यों, अब तो लक्ष्मण को 14 वर्ष जागना पड़ेगा, लक्ष्मण 14 वर्ष सोएगा नहीं। क्यों, मेघनाथ इतना शक्तिशाली है उसको 14 साल ब्रह्मचारी और जिसने कभी नींद नहीं की हो वो मार सकता है और कोई नहीं मार सकता है। मेघनाथ का वध केवल वो कर सकता है जो 14 साल कभी सोया नहीं हो, यहां तक कि कभी खाया नहीं हो, ऐसा भी लिखा है, और अखंड ब्रह्मचार्य का पालन जिसने किया हो वो इस इंद्रजीत मेघनाथ का उद्धार कर सकता है। तो ये राम जी जानते थे लक्ष्मण 14 साल पूरा चाहिए उस काम के लिए, 14 साल वनवास दे दीजिए और अब तो राजमहल के अंदर भगवान के पूजा का भी बहुत सुंदर घर हुआ करता था, हर राजमहल में सुंदर मंदिर हुआ करता। आज भी आप रजवाड़ों में देखो बड़े बड़े सुंदर मंदिर बने अंदर ही पूजा करने के लिए रणवास के, और उनके अंदर कूप भवन भी बने होते थे, ये भी राज हर राजमहल के अंदर एक कूप भवन भी होता है। आज तो मंत्रणा का आप जाइए कूप भवन में सो जाइए, महाराज तो आएंगे यहां। और तब एक बात यहां मंत्रणा कहती, एक बात याद रखना के कही, जब तक महाराज शपथ न ले ले राम की तब तक मुख मत खोलना, वो कहीं प्रेम से पति के प्रेम में तुम थोड़ी भी ढीली पड़ गई तो तेरा काम नहीं होगा। ये मंथरा भी जानती थी कि शपथ लेने के बाद वचन करने के बाद दशरथ महाराज ना नहीं कर सकते हैं, तो वचन का महत्व वो जानती थी। और आजकल ये नेता लोग इतने वचन करते हैं, वो तो इलेक्शन से पहले वायदे करते हैं और उसके बाद 5 साल तक तो दिखते ही नहीं। आजकल वचन का तो कोई वैल्यू नहीं रह गई जीवन में, लोगों को अपने वचन का कोई महत्व नहीं रह गया है, बात बात के ऊपर शब्द खा लेते हैं। एक दुकान के ऊपर गुरुजी 12 महीने में 1-8 साल आते थे, हर एक अपने शिष्य के पास दुकान के ऊपर जाके बैठे थोड़ी देर, तो दुकानदार कहता है गुरु का शपथ खा के कहता हूं 10 रुपये की आपसे ज्यादा नहीं लेता हूं, ये तो गुरु की कसम खाता हूं। आधे घंटे के बाद गुरुजी ने कहा तूने 15 बार मेरी कसम खाई है, तू धंधा करता है कि मेरे को बेचता है। वो शिष्य बोलता है गुरुजी ये दक्षिणा हर साल आपको काय की देते हैं, यही तो शब्द आपका खा के धंधा कर रहे, आपने भगवान का रास्ता बताया नहीं। तो ये तो ऐसा ही सब दुनियादारी चल रही है। तो ये शब्द तो आजकल इतने झूठे, लोगों के वायदे तो इतने झूठे हो गए हैं, इतने होशियार हो गए हैं लोग, मंदिर में भगवान के सामने इस पेटी को ताला कितना बड़ा लगाना पड़ता है, कभी लगता है भगवान के सामने जो प्रणाम करके भेंट चढ़ाने की पेटी है उसको भी इतना बड़ा ताला लगाना पड़ता है। ये भगवान के सामने भी लोगों को डालने वाले कुछ आते हैं, कहते हनुमान के मंदिर देखे, हनुमान के बंदर देखे, कुछ अंग्रेज कलंदर देखे, बहुत सुंदर है हा? क्या है कुछ पापी उनके अंदर देखे, तीसरा शब्द है हनुमान के बंदर देखे, अंग्रेज कलंदर देखे, कुछ पापी उनके अंदर देखे, दिखता है कि सब पूजा कर रहा है लेकिन बहुत बड़े पापी भी साधु के रूप में। अभी रावण कैसे आया सीता को उठाने के लिए, बहुत अच्छा सा सन्यासी का वेश धारण करे डंडा उठा के आया था। तो ये बहुत बड़ा भयानक युग है, वचनों के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है, लेकिन मंथरा ने ऐसा पक्का केकई को किया। अब दशरथ महाराज सब व्यवस्था देख के आए केकई के भवन में शुभ समाचार सुनाने के लिए, केकई को न देख के पूछा, दासी से बोला कूप भवन में गई है, महाराज वहां जाके केकई को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया, उठी नहीं। क्या चाहिए, आज तो खुशी का दिन है, आप ही तो मुझे कहती थी कि रामचंद्र का राज अभिषेक कर दो, आज वो दिन आ गया है तो आप क्यों नहीं उठ रही हो। इससे भी पता लगता है कि केकई राम के राज अभिषेक के लिए महाराज दशरथ को कहती रहती थी, ये महाराज दशरथ की वाणी से पता लगता है। और उस वक्त केकई तुम्हें चाहिए क्या, तुमने कुछ किसी ने कहा है क्या, क्या चाहिए, इतना कह के ने कहा, बोलते हो क्या चाहिए, कभी दिया है क्या। अब दशरथ जी कहते हैं प्रिय तुम्हारे लिए प्राण दे सकता हूं, रामचंद्र के अलावा और मुझे दूसरा कोई तुमसे ज्यादा प्रिय नहीं है। मैं उस राम का शब्द खा के कहता हूं तुम जो कहोगी तेरी इच्छा पूरी करूंगा। अब तो कोई कहीं उठ के बैठ गई, शब्द खा लिया रामचंद्र का, रामचंद्र से अधिक बस रामचंद्र के बाद आप ही मुझे सबसे प्रिय, ये दशरथ ने वचन कह दिए। अब कई कहते थे आपने मुझे दो वर दिए थे इस देवासुर संग्राम में, याद है ना? बोला दो क्यों, चार मांग लो, आज तो खुशी का दिन है। बोला दो वर मेरे को दे दीजिए। बोला मांग लो। के कहते पहला मेरा वर ये है कि जो सामग्री तैयार पड़ी है राज अभिषेक की, ये रामचंद्र की बजाय मेरे बेटे भरत का हो। महाराज दशरथ थोड़े सहम गए कि ये क्या मांग रही है, या ये कहते चलना चाहिए कि इतना बड़ा उत्सव अयोध्या में हो रहा था, कुछ रामायण में ऐसे लिखा है, तो जनकपुर में भी कोई संदेश तो गया नहीं कि वहां से कोई आदमी आया ही नहीं, राजा जनक को तो आना चाहिए ना, और फिर भरत भाई को शत्रुघ्न नहीं है और केकई देश से भी तो कोई बुलाना चाहिए था ना। तब वो लिखते हैं कि दशरथ महाराज को ये विश्वास था कि एक तो मेरे को मेरी आयु बढ़ती हुई जा रही है और पुष्य नक्षत्र गुरु जी ने निकालना है, भले काम में देर नहीं करनी चाहिए, ये तो दोनों राज हमारे अपने सगे संबंधी मित्र हैं, ये राम जी के लिए तो प्रेम उतना ही करता है जैसे मेरे हृदय में, और भरत राम को देख के प्रसन्न हो जाएगा तो उसके हृदय में अपनाप थी। लेकिन कुछ रामायणों में ऐसे भी लिखा है कि केकई के पुत्र को राज देने का लिख के दे के आए थे महाराज दशरथ केकई देश में, और इसलिए उन सब के न होने गैर हाजिरी में उनके अनुपस्थिति में ये राजतिलक होने जा रहा था। तो ये ऐसा दिखता है पूरी रामायण को ऐसे देखने से कि ऐसी स्थिति में राजतिलक हो रहा है जब जनकपुर से कोई नहीं आया हुआ है, कई कई देश से कोई नहीं आया हुआ है। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, महाराज का विश्वास है सबके ऊपर, फिर भी ये थोड़ा सा। और केकई को हमने आपको पहले दिन बताया था कि उनके पिताजी ने कान में कह दिया था कि आपके पुत्र को राज तिलक देगा, ये महाराज दशरथ ने हमको लिख के दिया है और वो हमारे पास लिखत है। तो ये सब बातें भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में अच्छी तरह से खोज करने से कहीं दशरथ के मन में कोई कुविचार नहीं है। दूसरा वर मांगने के लिए केकई ने मुंह खोला, रामचंद्र जटाजूट बांधकर और वलकल पेड़ों के छाल के वस्त्र पहन के आज अभी यहां से 14 साल वनवास जाएंगे। महाराज दशरथ एकदम पहले तो मूर्छित हो गए और फिर जब थोड़ा सा सचेत हुए तो केकई तुम मेरे प्राण क्यों लेना चाहती हो, राम के बगैर मैं कैसे जीवित रह सकता हूं। चांद अपनी शीतलता छोड़ दे मैं मान सकता हूं, सूर्य अपना गर्मीपन छोड़ दे ये मैं मान सकता हूं, राम सांप अपनी मणि निकलने के बाद जीवित रह सकता है, लेकिन मैं राम के बगैर जीवित नहीं रह सकता। ये तो क्यों मांग रही हो केकई, एक बात सुनो, भरत को राज में देता हूं, आपका पहला वर मान लेता हूं, राम को तो बड़ी खुशी होगी भरत के राजा होने में, हमारा राम राज का तो लालची है ही नहीं, और तेरे पुत्र को राज देना है तो मैं देता हूं, लेकिन दूसरा वर तो वापस ले लो, राम को मुझसे जुदा मत करो। केकई तो कठोर होकर कहती है पहले राम वनवास जाएगा फिर ही अभिषेक होगा। अब यूं तो सरस्वती ने तैयार करके, ये तो देवताओं का पूरा काम था और राम को भी वचन दिया होता, अब केकई को तो कठोर होकर ये कार्य करना ही था। महाराज दशरथ फिर मूर्छित होते हैं, पूरी रात कभी चरण पकड़ते हैं कभी क्रोध करते हैं, और कभी तो कहते हैं तुम्हारे भरत के राजा बनने के लिए भी मेरे राम का यहां रहना जरूरी है, राम नहीं होगा तो भरत राज नहीं करता करेगा, ये कह के तुम सुन लो, तेरे भरत को राजा बनाने के लिए भी राम की जरूरत है, राम नहीं रहेगा तो भरत राजा नहीं रहेगा। एक नास्तिक होते हैं और दूसरे आस्तिक होते हैं ना, हाँ एक एथिस्ट होते हैं, एथिस्ट की डेफिनेशन क्या है राम रूप जी, जब हम एथिस्ट किसको बोलते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, सो अथिस्ट को अथिस्ट कहने के लिए भी गॉड की जरूरत है, हाँ? अगर गॉड नहीं होगा तो अथिस्ट कैसे उसको कहोगे, हाँ? The one who does not believe in God, तो God तो चाहिए atheist किसी को कहने के लिए भी, तो बगैर भगवान के तो किसी को नास्तिक भी नहीं कह सकते हो। तो राम नहीं होगा तो भरत राज नहीं करेगा। एक कथा बताई दशरथ जी ने कि आपके पिता के कई अश्वजीत, उसको पक्षियों की भाषा आती थी। एक दिन कुछ पक्षी बोले और तुम्हारे पिताजी हंसे, तुम्हारी मां ने पूछा इसका अर्थ बताओ। पिताजी को गुरु ने कहा था कि पक्षियों की भाषा का कभी अर्थ बताया तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अब तुम्हारी माता ने बहुत जिद किया लेकिन आपके पिता ने अर्थ नहीं बताया क्योंकि वो अनर्थ हो जाता। तो ऐसे मैं आपको बताता हूं कि आप ये अपने वचन को छोड़ दो नहीं तो मेरे प्राण चला जाएंगे। राम, अब सुबह हो गई, इस सारे बहुत बड़ा लंबा ये वार्तालाप दशरथ और कैकेयी का रात को सुबह। वशिष्ठ जी कहते हैं मुहूर्त का टाइम हो रहा है, सुमंत्र अभी तक महाराज दशरथ तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले सुबह अभी तक दर्शन नहीं हुआ, तो अंदर तो रणवास में एक सुमंत्र जा सकता था। सुमंत्र अंदर गया, अंदर को वातावरण को देखा तो उनको थोड़ा सा दिल हिलने लगा। ये महाराज ऐसे अभी तक अचेत क्यों पड़े हैं, उठने का समय हो गया। उन्होंने तो महाराज के गुणगान शुरू किए। महाराज ने कहा ये मैं नहीं सुनना चाहता, आज मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे हैं तुम्हारे। महाराज बोले नहीं, तब कैकेयी ने झूठ बोला, सफेद झूठ। सारी रात राम के अभिषेक की खुशी के कारण नींद नहीं आई है, इसलिए अब थक गए हैं, नींद आ रही है, ये वचन बोले हैं और फिर कहा कि ये राम जी को देखना चाहते। आज सुमंत्र मंत्री है, मंत्री के नेम को जानता है। कहते हैं महाराज की आज्ञा के बगैर मैं कैसे राम जी को बुलाने जाऊं, महाराज कहेंगे तब जाऊंगा। महारानी ऐसे आपके अकेले के कहने के ऊपर नहीं जा सकता हूं। अब सुमंत्रा ने यह क्यों नहीं कहा कि समस्या क्या हो गई है, क्यों महाराज ऐसे पड़े, ये क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा, यह सुमंत्र तो तीन पीढ़ियों से मंत्री है, ये तो इतना विशारद है, ये अभी सारी खाया पलट के मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ देगा। इसलिए रामचंद्र जब आ जाएंगे वो पिताजी का वचन कह देंगे, उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये कैकेयी का बहुत बड़ी बुद्धिमती थी, ठीक है, नहीं तो ये विशारद मंत्री है, ये तो कुछ भी अभी तोड़ निकाल देगा यहां से, वो तो कोई सामान्य में व्यक्ति नहीं है सुमंत्र। तो महाराज दशरथ ने कहा कि मैं राम जी का दर्शन करना चाहता हूं। सुमंत्र भागते हुए राम जी को बुलाने गए, राम जी रथ के ऊपर चढ़ के भागते हुए अंदर आके प्रणाम किया माता कैकेयी को और दशरथ को, और दशरथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। राम जी कहते हैं मां पिताजी को क्या हो गया, ऐसा क्या कोई मुझसे अपराध हो गया, अक्षम्य इसके लिए पिताजी की ये हालत हो गई है, क्या मेरे कुछ अपराध हुआ है? अब तो कैकेयी को कहना पड़ा राम तुमसे अपराध हो नहीं सकता है। तो ये कैकेयी नहीं मान सकती है कि राम कोई गलत काम कर सकता है, आपसे राम अपराध नहीं हो सकता है। तो पिता क्यों नहीं बोल रहे मेरी मां? बोले बेटा तुम्हारे सामने बोलने में इनको संकोच हो रहा है, मैं बताती हूं आपको, आपके पिताजी ने मुझे दो वरदान दिए थे, आज मैंने वो दो वरदान मांग लिए हैं। पहला वरदान तो ये है कि आपकी बजाय मेरे बेटे राम को, भरत को राज तिलक मिलेगा, और दूसरा आपको आज ही वन में जाना है जटाजूट और बलकल पहन के। राम मुस्कुराने लगे। बड़ा सुंदर यहां वर्णन है, पहले तो राम को कहा है कुलदीप, रघुकुल दीप, दीप के लिए तो भाई बाहर से घी चाहिए, तेल चाहिए, हवा आएगी तो बुझ जाएगा, दिन में प्रकाश देगा नहीं। और जब यह सुनाया कि अभिषेक राज आपका नहीं होगा, तब कहा है रघुकुल मणि, मणि का मतलब अपने आप प्रकाशित है, बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसका प्रकाश तो दिन रात में रहता है। और जब वनवास का सुना है तब तो कहते हैं भानुकुल भानु, तब तो कहते हैं सूर्य कुल का सूर्य है, तो तुम्हारा तो अंधकार हो ही नहीं सकता है, तुम दूसरों को प्रकाश देने वाले हो। तो रामचंद्र ने यह सुना तो मुस्कुरा दिया। वाल्मीकि जी लिखते हैं राज अभिषेक राज लक्ष्मी को जाते देखा और वनवास का भी वचन सुना, लेकिन राम उस योगी की तरह धीर पुरुष की तरह संतोलन में रहे और कह दिया मां पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि पिताजी ने मुझे अपने मुख से ये क्यों नहीं कहा। और दूसरा, मां आपने इस वचन के लिए पिता को इतना कष्ट क्यों दिया? मेरे ऊपर विश्वास नहीं था क्या? मैं आपकी बात नहीं मानता क्या? इससे लगता है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करती। और फिर राम जी कहते हैं, सुन लो, लोग पक्षपात कहेंगे आपको मेरी मां। भरत को तो दिया राज इतना छोटा देश का, और हमको इतना बड़ा वन प्रदेश का राज दे दिया, तुम तो लोग कहेंगे तुमने अन्याय कर दिया। वन में तो मुझे अकेले अपनी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, और यहां पूरे नगर की सुरक्षा भरत को दे दिए, महाराज को भी लोग पक्षपाती कहेंगे। और राम जी के और कहते, मैं तो आज पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए प्रणाम करके राम जी यहां से निकले हैं। बाहर रथ को खड़ा देखा, रथ पान कोचवाने का चढ़िए। राम ने रथ को प्रणाम किया, बोला अब रथ का चढ़ के ऊपर चढ़ना अब मेरे लिए ये नहीं है। और कौशल्या मां के पास जाके प्रणाम किया। मां ने कहा, बेटा आसन रखा है, बैठो, कुछ खा लो, अभी समय है, आप जाइए, आपका अभिषेक होगा। राम जी ने आसन को हाथ लगा के सर को लगाया, बोला मां अब तो कुश के आसन के ऊपर बैठना है और वन के अंदर ऋषियों का सत्संग करना है। पिताजी ने मुझे इतना बड़ा विशाल वन का राज दे दिया। मां तो कौशल्या धड़ाम से नीचे गिरी। राम जी ने हाथ से पकड़ लिया उसको, मां को थोड़ा सा सांत्वना दी। उस वक्त लक्ष्मण साथ पीछे खड़े थे, उसको बहुत क्रोध आया। वाल्मीकि जी रामायण में लिखा है, लक्ष्मण कहते हैं, बड़ी मां हमारे पिताजी एक तो बूढ़े हो गए, दूसरा उस केकई के चुंगल में आ गए, मैं उनको बंदी बना दूंगा, मैं रामचंद्र को राज तिलक दे दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो उनको मार भी दूंगा। ये अब मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके फिर वापस आके ये बात बताता हूं। जब सुमंत्र सीताराम लक्ष्मण को लौटा नहीं पाए, दशरथ ने कहा था ये छोटे बच्चे हैं, चार दिन वन में घुमा के वापस लेके आ जाना, और ये कहा कि ये दोनों मेरे बच्चे हो सकता है कि वचन के पालन के कारण नहीं आए, लेकिन मेरी सुकुमारी सीता को तो वापस ले ही आना। लेकिन जब किसी को नहीं लाए तो दशरथ ने पूछा था, संदेश क्या दिया है राम ने? राम ने कहा है, पिताजी बस 14 साल गुजरेंगे, मैं हम आपके चरणों में प्रणाम करेंगे, आप सब माताओं को समान भाव से प्रेम से उनके साथ व्यवहार करना, और भरत जी लक्ष्मण जी आपकी सेवा में रहेंगे, हम आपका वचन पालन करके आ जाएंगे। तो पूछा कि लक्ष्मण ने क्या कहा है? तब सुमंत्र कहता है, लक्ष्मण ने कहा, इतना कठोर वचन कहा कि राम जी ने अपना शपथ मुझे दिया है कि सुमंत्र मेरा तेरे को शपथ है, तुम ये राजा को मत बचाना, तो उनको बड़ा दुख होगा। लेकिन फिर सुमंत्र कहता है, महाराज मैं तो आपका सेवक हूं, आप राजा हैं, आप कहें तो मैं बता दूं, मर्यादा है। राजा दशरथ कहता है, नहीं, राम का शपथ मत तोड़ना, मैं समझता हूं मेरा बेटा है लक्ष्मण, मेरा बेटा है, क्या कहा कहा होगा मैं समझता हूं। और दशरथ तब क्या कहते हैं, जो लक्ष्मण ने कहा होगा वो मैं समझता हूं, और अब मेरा मरना आसान हो गया, अब मुझे मरने में कोई भय नहीं लगेगा। यही तो कहा होगा लक्ष्मण ने कि जरूरत पड़ने के ऊपर मैं राम की रक्षा के लिए बाप का भी सर काट सकता हूं, और ऐसा भाई राम के साथ है तो मुझे अभी कोई चिंता नहीं है, मैं मर सकता हूं। अद्भुत वचन है ये, 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 ये मत कहना। और दशरथ कहते हैं, मैं जानता हूं क्या कहा होगा लक्ष्मण ने, ऐसा भाई अगर राम के साथ है तो अब मुझे मरने की चिंता नहीं है, अब मेरा मृत्यु सुधर गया। तो लक्ष्मण ऐसे जब वचन कहे तो कौशल ने कहा, देखो राम लक्ष्मण क्या कह रहा है। तब तक मां शांत हो गई कौशल्या, कहा माता मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, पिताजी के वचन का पालन करना है। और कौशल्या हृदय को पकड़कर दोनों हाथों से आशीर्वाद देते कहती है, जल्दी आपका दर्शन करूं, ये मेरी अभी अभिलाषा है। और वहां से सीता के महल में राम जी आते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता के महल में जब राम जी आते हैं सीता जी तो स्वागत करती है, आसन देने का आपको देर हो रही है, आप कब जाएंगे राज अभिषेक के लिए। तब का सीता अभी तो वन का सुंदर दर्शन करने के लिए पिताजी ने आज्ञा दे दी है, राज अभिषेक वाले काम को तो अभी स्थगित कर दिया गया है और मुझे अभी वनवास जाना है, और आप माता कौशल्या का विशेष रूप से ध्यान करना, वो बहुत इस वक्त जो है पीड़ा में है, और आप यहां रहिएगा, माताओं का ध्यान कीजिएगा, मुझे नहीं देखेंगी, आपको देख के हो सकता है कि माताओं की धीरज बंधी रहेगी। सीता जी कहती है, प्राणनाथ आप क्या कह रहे हैं, आप चले जाएंगे वन में, मैं यहां बैठ के महल के अंदर पलंग के ऊपर सोऊंगी और आप जाके वन के अंदर कुछ घास के ऊपर सोएंगे। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती हूं, मैं आपके साथ चलूंगी। राम जी कहते हैं, वन में बहुत बड़ा भयानक होता है, रास्ता कांटों वाले होते हैं, पत्थर होते हैं, आपके चरण तो सुकुमार हैं, आप कैसे उधर चलेंगी। तब तो सीता कहती है, मैं वन में आपकी सेवा के लिए जाना चाहती हूं, आपके आगे आगे चलूंगी, मैं कांटे को कुचलती हुई आपका मार्ग बनाती हुई चलूंगी, पेड़ के नीचे आप थक जाएंगे तो मैं आपकी चरण दबाती रहूंगी। सीता ने बहुत अद्भुत ऐसा भाव प्रकट किया है। राम जी ने कहा है, बहुत कष्ट होगा जनक नंदनी, आप हमारे साथ चलेंगी तो। तब तो सीता ने वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा रोष से कहा है कि आप इतने डरपोक क्यों हैं, मेरे पिताजी को ये पता होता तो धनुष तोड़ने के बाद भी मेरे को वर में आपको नहीं देते कि आप मुझे ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। तब तो राम जी निरुत्तर हो गए। कहा, सीते ठीक है, पर तुम तैयारी करो, अपने पास जो भी संपत्ति है इसको ब्राह्मणों में बांट दो। अपने सेवकों को लेकर राम जी ने कहा, महाराज वशिष्ठ, हमारे पिताजी इस वक्त हमारे विरह के कारण बिल्कुल व्याकुल है, माताएं बहुत व्याकुल हैं, भरत भाई और शत्रुघ्न है नहीं, ये हमारे सेवक हमारे पुत्र की तरह हैं, और सीता ने इन सेवकाओं को अपनी पुत्री की समान समझा है। आज हम जा रहे हैं, इनकी 14 साल तक भोजन की व्यवस्था देखभाल, इनको कभी कष्ट न हो, इनको हमारे पुत्र पुत्रियों के समान संभाल के रखना, ये जो मर्यादा। और फिर सब जितना भी धन धान्य था वो सब बांट के सब में बांटने का कहा। तो एक रोचक कथा है कि एक ब्राह्मण आया तो बोला, तुम्हारी लाठी हो एक बार दुबला पतला, तो जितनी तुम्हारी लाठी है उतनी दूर फेंको, जितनी गाय है वो सब तुम्हारी है। तो ऐसे उसको सब कुछ दिया। तब लक्ष्मण सुनते हुए कहते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। बोले, नहीं, कौन देखभाल करेगा पिताजी की, भरत तो है यहां है नहीं, शत्रुघ्न यहां है नहीं, माताएं इतनी कष्ट में है, मैं किसी को माता पिता की कुछ नहीं जानता हूं, मैं राम जी सिर्फ आपको जानता हूं, आपके बगैर तो मैं जीवित रह नहीं सकता, न सीता जीवित रह सकती है, हमको तो साथ लेके चलना पड़ेगा। भरत जी का लक्ष्मण का आग्रह देख के राम जी ने कहा, अपने अस्त्र शस्त्र से दो बड़े सुंदर तरकश तीर और तलवारें निकाल के जल्दी आओ, तैयार होकर पिताजी से विदा होने के लिए जाना, लेकिन पहले एक बात सुनो लक्ष्मण, माता सुमंत्रा से जाके आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण सुमंत्रा को प्रणाम करके कहता है, माता, वन में जाने की आज्ञा मांगने के लिए आ रहा हूं। राम जी ने कहा है, माता से आज्ञा मांगो। तो सुमंत्रा कहती है, तो माता से आज्ञा मांगने को कहा तो सीता से आज्ञा मांगनी थी ना, मेरे पास क्यों आयो, मैंने तो आपको सीता को समर्पित कर दिया था, आपको तो उन्हीं से आज्ञा मांगनी चाहिए थी। लेकिन अगर आ ही गए हो तो बेटा आज सुन लो, आज से राम तुम्हारे लिए दशरथ की जगह पिता हैं बड़े भाई के साथ, और तुम्हारी माता जानकी है, और बन ही तेरे लिए अयोध्या है, और मैं मां तब तुमसे संतुष्ट होंगी जब तुम इनकी अच्छी सेवा करके और इनके साथ वापस 14 साल के बाद मुझे प्रणाम करेंगे, तब मेरा हृदय गदगद हो जाएगा, ऐसी मां सुमंत्रा जैसी नहीं मिलेगी। ये अद्भुत माता है, ऐसी माता जिसने अपने दोनों पुत्र ऐसे सेवा में लगा दिए, ये अद्भुत माता आज ये हृदय के ऊपर पत्थर रख कैसे कह रही है। अब तीनों राम लक्ष्मण सीता केकई के महल में प्रवेश करते हैं, प्रणाम करते हैं, महाराज दशरथ के तो आंसू बह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलते हैं, राम, मैं तो धर्म का पालन करता हूं, मैंने वचन दे दिया है, मैं तो छोटी रानी के मोह में फंस के ये वचन दे दिया, लेकिन तुम तो बेटा मेरे को बंदी बना के राजा बन जाओ। ये राजा दशरथ कहते हैं, इतने व्याकुल हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे बंदी बना लो, तुम राज करो बेटा, तुम कहां जाओगे? रामचंद्र कहते हैं, पिताजी हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपके सत्य वचन को सत्य करेंगे, और हमारे साथ सीता और लक्ष्मण भी वन में जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। अब तो दशरथ कहते हैं, सुमंत्र अपनी चतुरंगनी सेना को इनके साथ भेज दो, इनके साथ वो सब जो वन के मार्ग जानते हैं उनको भेज दो, रास्ते सब ठीक करा दो, कोष सारा इनके साथ भेज दो। अब तो केकई उठ के खड़ी हो गई, क्या सूने राज के ऊपर मेरा बेटा भरत राज करेगा? दशरथ को क्रोध आता है और कहता है कि तुमने ये वर मांगा है क्या? ये वर तो नहीं मांगा है ना? लेकिन कहां चुप होने वाली थी केकई, वो तो अंदर से जाके वो पैरों की छाल के वस्त्र लेके आ गई। कहा, राम जी जल्दी करो ये पहनो, पिताजी की आज्ञा के पालन करने में देर मत करो। उस वक्त सुमंत्र खड़े खड़े को क्रोध आ गया, उनका कुल घातनी तुम पति की हत्यारी बनोगी। भयभीत जैसे केकई थोड़ी हुई, सुमंत्र तो दशरथ के समान सम्मान्य व्यक्ति थे, और उसने केकई को जब डांटा तो केकई थोड़ी सहम गई, लेकिन कहा जल्दी करो राम जी कपड़े पहन लो। राम जी ने तो पहन लिए, लक्ष्मण ने पहले सीता बिचारी को पहनने में दिक्कत हो रही थी, तो लक्ष्मण तो राम जी सीता को वस्त्र पहना रहे, तब तो वशिष्ठ जी आ गए, उनको क्रोध आ गए। और वशिष्ठ जी को क्रोध आया, उसने कहा केकई नंदनी तुमने सीता को तो वनवास नहीं दिया है, पुत्र वधु है, इसको तो सुंदर वस्त्रों में भेजो यहां से, इसको कह लिए कह के लिए वलकल पहना रही हो, तुम तो कुल की घातक हो, कुल कलंक हो। वशिष्ठ जी भी क्रोध में हो गए, लेकिन राम उतने ही सुशील ऐसे खल के, पर अब हमको निकलना है। सुमंत्र को दशरथ जी कहते हैं रथ के अंदर ले जाओ, दो चार घुमा के दिन वापस लेके आना। रथ के ऊपर सुमंत्र ने चढ़ाया है, राम जी चढ़े हैं, सीता को हाथ से पकड़ के बिठाया है, लक्ष्मण तो धनुष बाण उठा के बैठे, रथ निकला है, बाहर निकले हैं दशरथ जी रथ के पीछे। अब तो पूरे नागरक बाहर आ गए हैं, राम जी का ये करुणा, सबके आंखों में आंसू बह रही है, पूरी करुणा मूर्ति, पूरी अयोध्या करुणा की मूर्ति बन गई है। दशरथ जी बाहर आके राम जी को देखते हैं, कहते एक दिन रुक जाओ, थोड़ा रथ आस्ते चलाओ, मैं जी भर के राम को देख लूं, 14 साल के बाद मुझे देखने को मिलने। लेकिन राम जी कहते हैं सुमंत्र अब रथ को जरा तेज चलाओ, ये पीड़ा न मुझसे देखी जाएगी न पिताजी से देखी जाएगी। सुमंत्र आज्ञा का पालन करता है, रथ तेजी से आगे बढ़ता है, और जब तक रथ की धूल दिखती है तब तो महाराज दशरथ देख रहे थे, फिर धराम से नीचे गिरते हैं। तो एक तरफ से केकई पकड़ने की प्रयास करती है, कौशल्या ने हाथ पकड़ा, महाराज ने केकई को कहा मुझे हाथ मत लगाना, आज से तुम मेरे लिए मर गई, मेरी पत्नी नहीं हो। अरे सेवको मुझे कौशल्या के महल में ले चलो, मुझे ही मुझे शांति मिलेगी। महाराज दशरथ को कौशल्या के महल में ले जाया गया, और सारे नगरवासी पीछे भागते भागते रथ के पीछे जाने लगे। रामचंद्र ने देखा कि ये पूरा नगर पीछे आ रहा है, ये ब्राह्मण, ये बालक, ये बूढ़े, रथ से उतर के रामचंद्र पैदल चलने लगे कि ये प्रजा पैदल आए और रथ तेज भागे, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। शाम हुई, तमसा नदी आई, रुक गए सारे पुरवासी, रुक गए, और 2 घंटे के बाद पेड़ के डालियों के ऊपर सर रख के नगरवासी सोए हुए थे। रामचंद्र ने उठा के कहा सुमंत्र देखो मेरे अयोध्यावासी महलों में रहने वाले कैसे पेड़ों के डालियों पेड़ों की जड़ के ऊपर सर रख के सोए, इसको ऐसा दुख फिर नहीं मिलना चाहिए, ये हमारे साथ जाएंगे, इतना प्रेम करते हैं हम, इसको नाम भी नहीं कर पाएंगे, और ये कितना दुख उधर उठाएंगे, ये ब्राह्मण के लिए कहां हम व्यवस्था करके वहां यज्ञ याग का बंदोबस्त करेंगे। अब रात हो गई है, हमको यहां से ऐसे रथ कर चला के चलो कि रथ के पहियों के निशान सब वो इनको नहीं मिलने चाहिए, ये वापस कल अयोध्या पहुंचने चाहिए। सुमंत्र रथ को एक दिशा में ले गया, दूसरी दिशा में ले गया, इतना घुमाया कि उसके पहियों के निशान कहां गया, ईस्ट क्या उत्तर गया कि दक्षिण गया, पता नहीं लगा। तो यहां एक सिद्धांत ये होता है, जो सो जाता है वो खो देता है। जो जागता है वो भगवान के साथ जाता है। सीता जाग रही थी, लक्ष्मण जाग रहे थे, बाकी सब सो गए, जो सो गए वो रह गए, तो भगवान तो निकल के आगे चल गए। मर्यादा इतनी थी कि किसी को मना नहीं कर सकते थे। सुबह ये पुरवासी उठ के कहते हैं कि हाँ, ये नींद निगोरी ने हमको भगवान से अलग कर दिया, कहां से ये नींद आ गई, इधर घूमे उधर घूमे, कई पहियों के निशान नहीं मिले। बड़े दुखी होके कहा के कितने दयालु है रामचंद्र, हमारा दुख नहीं देख सकते हैं, इस हमको छोड़े। वापस बेचारे दुखी होके घर आए। दूसरा रास्ते में सीमा आ गई अयोध्या की, और पुरवासियों को कहा अब मेरे भाइयों, आपके प्रेम के कारण आप मेरे पीछे आए, मेरे साथ आए, अब यहां अयोध्या की सीमा समाप्त होती है। राम जी ने अयोध्या को प्रणाम किया और सीता ने प्रणाम किया। लक्ष्मण ने कहा अयोध्या अब 14 साल के बाद फिर हम वापस आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, आप लोग सब अब यहां से जाइए। सबको विदा किया। सीता आगे राम जी चल रहे हैं, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण, लक्ष्मण चल रहे हैं। अब गंगा जी का तट आया है, श्रृंगवेरपुर का गांव आया है, गंगा का दर्शन किया है, भगवान राम ने प्रणाम किया है, गंगा में स्नान किया है, आज उपवास करने का अब व्रत ले लिया है। इतनी देर में श्रृंगवेरपुर का राजा गुहा निषाद पता लगाए भागता हुआ, बहुत बड़ी सामग्री लेके अपने मंत्री लेकर आए और कहा राम जी हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप यहां पधारे हैं, ये सब आपके लिए भेंट है, बस आप यही राजा बन जाइए, हम आपके सेवक बन जाएंगे, आप इधर रहिए, अब और कहीं यहां से आगे नहीं जाइए। राम जी ने तो उसको कहा, उसने कहा हम आपके शरण में, और राम जी ने उसको ऐसे हाथों से लगा के कहा हे मेरे मित्र। पहला भगवान राम ने उस निषाद को मित्र बनाया, जिसको सब नीच जाति का कहते हैं, उसको गले से लगाया है, मित्र बना के कहा कि आज हम व्रत करेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, बाकी ये हमारे राजमहल से आए हुए महाराज दशरथ के घोड़े जो हैं, इनको अच्छी तरह से आप इनका खिलाना पिलाने का व्यवस्था करो। तो उसने सोने के लिए पेड़ के नीचे बहुत आसन बनाया सीता और राम के सोने के लिए। लक्ष्मण जी का हमने आपको बताया, चरण दबाते हुए राम जी ने आज सोने को कहा नहीं है, तो लक्ष्मण धनुष बाण लेके वीरासन में बैठ गया। और गुहा राजनीति जानता था, चारों ओर से अपने बहुत विश्वास पात्र सैनिकों को खड़ा करके सारी रात वो भी जागता रहा। सुबह को राम जी ने फिर गंगा में स्नान किया, वंदना किया और कहा निषाद मुझे जरा वट वृक्ष का दूध तो लाके दो। वो तो जाके दूध लेके आया। आज राम जी ने पहले लक्ष्मण की जूटा जटा बनाइए, फिर अपनी जटा बनाइए, और निषाद और सुमंत्र रो रहे हैं। निषाद कहता है इसी काम के लिए मैं आज आपके सुंदर केशों को जटा के रूप में देखने के लिए दूध लाया, वट वृक्ष का ये काम मुझसे होना है। जैसे चेतना महाप्रभु के लिए वो जो नाई रो रहा था कि मेरे हाथों से ये बाल कटने थे, ऐसी ही उसकी दशा है। तो राम जी ने 3 दिन के बाद जटा जूट क्यों किए, ये तो कहा था कैकेयी ने यहां से ही करके जाओ, तो वहां क्यों नहीं किए। 4 दिन और दशरथ जी का जीवन बाकी था, अगर वहां जटा कर ली होती तो उसी वक्त उनके प्राण निकल गए होते, तो उनको दुख न पहुंचे, इसलिए राम जी ने। और फिर मां कौशल्या कैसे भी धीरज बांध चुकी थी और ये जटाओं को मां देख नहीं सकती थी, इसलिए आज 3रे दिन जटाएं बांधी है और फिर कहा है कि अब हमको गंगा पार करना है। इस गंगा पार में यहां, और फिर सुमंत्र को कहते हैं अब आप यहां से वापस जाइए। सुमंत्र ने मुझे वहां आप साथ ले चलिए, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूं। तो राम जी ने एक सिद्धांत सीधा बताया, सुमंत्र वे तुम जब तक वापस नहीं जाओगे, ये राजमहल का रथ जब तक वापस नहीं जाएगा तब तक छोटी मां को विश्वास नहीं होगा कि हम वनवास चले गए। तो केकई को विश्वास दिलाने के लिए आपका वापस जाना अति आवश्यक है, इसलिए आप जरूर जाइए और ये संदेश हमारा महाराज को दे दीजिएगा। सुमंत्र जाने की इच्छा नहीं है, आंखों में से आंसू बह रहा है, मैं आपके साथ चलूंगा। घोड़े भी वापस मुड़ने को तैयार नहीं है, घोड़े के आंखों में भी आंसू है। उस वक्त वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सीता केवल उस रथ को और घोड़ों को देख के आंसू बह रही थी। आज से उसको ये रथ घोड़े महल सब अब उसके लिए 14 साल नहीं रह गए। तो यहां केवट का जो प्रसंग तुलसी रामायण में है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन बड़ा अद्भुत अपने आप में प्रसंग है, क्यों वो प्रसंग है उसके ऊपर अच्छी टीकाएं लिखी है रामायण के कुछ बहुत आचार्यों ने, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उसका कुछ लिखा नहीं है। गुहार ने, वो निषाद राज ने एक नाव का व्यवस्था कर दी और उन्होंने गंगा पार किया। लेकिन केवट वाले प्रसंग को आप सब जानते हैं, उसको मैं दोहराता नहीं हूं। लेकिन केवट के मन में केवल एक ही था कि राम जी अभी सुमंतर से विदा करके, आंखों में आंसू राम जी के भी हैं, अपने भक्त को विदा कर रहे थे, और गुहा वो तो पीछे एक साथ चलने के लिए बहुत आतुर था, तो आज ऐसी कुछ बात करनी चाहिए कि ये मुस्कुराते हुए यहां से जाएं, इनके मुख के ऊपर थोड़ी हंसी आनी चाहिए। ये उस केवट के मन में ये भाव था। तो उसने क्या कहा आप जानते हैं कि मेरी नाव मैं नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? तो कारण क्या बताया कि आपके चरण की रज से वो पत्थर से स्त्री बन गई, ये कहीं मेरी नौका स्त्री बन गई तो एक मेरे से पहली नहीं पाली जाती है, ये दूसरी गले पड़ जाएगी। तो उसने ऐसे कुछ रोचक उसमें ये बातें लिखी है, लेकिन उसके पीछे उसका एक ही उद्देश्य था कि जितनी देर ज्यादा मैं रामचंद्र का दर्शन करूं वे मेरा भाग्य है, जो भी है मैं आपके चरण धोऊंगा। चरण धोने के लिए मानो राम जी ने हां किया, तो फिर आगे बोलता है, लालच बढ़ गई, बोला चरण में आपका धोऊंगा, फिर आप धरती के ऊपर चरण रखेंगे, फिर धूली लग जाएगी, डर तो धूली से है ना, इसलिए चरण धोने के बाद मैं आपको ऐसे उठा के ले जाके नौका में बिठाऊंगा। ये केवट के मन में गले मिलने का भाव आ गया है। तो ये अद्भुत, जैसे जैसे हम दामोदर अष्टक में देखते हैं, पहले मन में देखना चाहता है, फिर साक्षात दर्शन की बात हो जाती है, तो भक्त के मन का भाव ऐसे बढ़ता है। जो भी हो, केवट को उस दूसरी तरफ जाके राम जी के मन में, अब जो एक प्रचलित कथा होती है उसको कहे कि है ही नहीं तो भी ठीक नहीं है, तो राम जी को थोड़ा संकोच हुआ कि अभी है भी कुछ नहीं, इसको देंगे क्या उतारने के लिए, भाई आखिर नाव की उतराई तो देनी चाहिए ना। तो सीता जी ने अपनी अंगूठी निकाली, केवट के आंखों में आंसू आ गए, मैंने कहा था मैं उतराई नहीं लूंगा, अरे मेरे कारण मेरी मां की उंगली से अंगूठी निकल रही है, मैं कैसे देख सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। हाँ, आपको देना है तो जब आप वापस आओगे तब प्रसाद दे देना, अभी मैं कुछ नहीं लूंगा। भाव अच्छे हैं। एक और आगे चले हैं, गंगा जी के तट पे रात को रुके हैं, दूसरे दिन त्रिवेणी संगम को देखा है, प्रणाम किया है, स्नान किया है, भारद्वाज आश्रम में गए हैं, भारद्वाज ऋषि ने स्वागत किया है, रुके हैं, कंदमूल खाया है। भारद्वाज ने कहा यहीं रुक जाओ, बहुत सुंदर त्रिवेणी संगम है, यहां वट अक्षय वट है, यहां बिंदु माधव है, तो ये बहुत सुंदर तीर्थ स्थान है। राम जी कहते यहां अयोध्या बहुत निकट है, रोज कुछ लोग आते रहेंगे, तो वनवास के लिए जो हमारे को पिताजी का वचन है पूरा नहीं होगा, आप हमें बताइए कौन सा स्थान है जहां हम जाके आराम से रह सकते हैं। भारद्वाज जी कहते यहां से आगे थोड़ा चित्रकूट बहुत सुंदर है, उसके शिखरों को देखने से हृदय गदगद हो जाता है, कमदगिरी है वहां मंदाकिनी बहती है, इतना सुंदर ये स्थान है, आप राम जी वहां विश्राम कीजिए, वहां जाके रहिए। अब सीताराम लक्ष्मण यहां से चलते हैं, इसके चलने में कितने पुरवासी मिलते हैं, कितना उनको बातचीत होती है, कितने लोग इनको देख के आश्चर्य करते हैं, ये बड़ा अद्भुत सारा वर्णन है। लेकिन बीच में वाल्मीकि जी का आश्रम आता है, वहां भी रुकते हैं, और चित्रकूट पहुंचने के ऊपर लक्ष्मण जी बहुत सुंदर पर्ण कुटीर बनाते हैं सीताराम के लिए, अपने को तो कुटीर की जरूरत नहीं है, लक्ष्मण को वो तो सारी रात जागते रहेंगे। यहां एक साल बहुत सुंदर सीताराम लक्ष्मण का आगे चल के बीतेगा, जहां राम जी सीता को तीर चलाना सिखाएंगे, स्पर्कट शिला के ऊपर बैठेंगे, सुंदर प्रेम का जितना समय सीताराम का चित्रकूट में गुजरा है इतना और कहीं नहीं गुजरा है, बहुत सुंदर समय गुजरा है। तो आज चित्रकूट में सीताराम लक्ष्मण को आनंद से रहने दीजिए, कल फिर हम वापस अयोध्या चलेंगे और भरत की महिमा का वर्णन और श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।